ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर के पुनः ओम शांति शब्द का उच्चारण इस रीति से करेंगे जैसा हम सबने सुना है यज्ञ के आदि में सभी यज्ञवत्स मिलकर किया करते थे। अंदर गहरी सांस लेंगे और उस श्वास को छोड़ते हुए ओम, और फिर श्वास लेकर छोड़ते हुए उसे शांति शब्द का उच्चारण हम सब मिलकर करेंगे। पहले सब एक गहरी श्वास अंदर लें। शांति के महामंत्र में ही जीवन के सभी गुह्य रहस्यों का समाधान समाया हुआ है। आज की भी बाबा की जो मुरली थी, उस मुरली में मुख्य बात क्या थी, सार क्या था, बाबा ने क्या कहा कि हम सब बच्चों को अपने लिए क्या बनना है, फायर ब्रिगेड। सभी जानते हैं ना, कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड जाती है, आग को बुझाती है। लेकिन कब वो आग बुझा पाती है, फायर ब्रिगेड कब आग बुझाती है, जब उसके पास पानी का स्टॉक हो। पानी नहीं होगा, स्टॉक ही नहीं होगा, तो वो क्या करेगी, वहां जाके बुझा नहीं सकेगी। और दूसरा, जो फायर आग को बुझाने वाले होते हैं उनका कपड़े भी दूसरे तरीके के होते हैं, फायर रेजिस्टेंट, कि आग में अगर जाएं तो भी उनको आग की गर्मी न लगे, जले नहीं। जूते भी वैसे होते हैं, चश्मा आदि भी, यानी अपने को उस आग से सुरक्षा देने का पूरा साधन होता है। तो जब बाबा ने कहा अपने को फायर ब्रिगेड समझो, तो उसके पीछे यही भावार्थ समाया हुआ है कि हमें पहले तो अपने, जो बाबा ने कहा है आज की मुरली बाबा की, ज्यादातर काम विकार के ऊपर, काम अग्नि के ऊपर ही चली थी, तो पहले अपने लिए फायर ब्रिगेड बनना है, यानी कि हमें खुद बहुत शांत और शीतल विकारों से बनना है। और इसके लिए पूरा पानी का स्टॉक जैसे होता है, और इसीलिए आज का विषय भी है स्व उपकार के साथ साथ पर उपकार, परोपकार। तो पहला स्व उपकार तो बाबा ने आज यही बताया कि अपने को फायर ब्रिगेड समझो। तो ये स्टॉक, हाँ, इस विकार से बचने के लिए क्या करो, और अपने को, बाबा की मुरली तो सभी सुनते हैं, बाबा के सब नए पुराने बच्चे सब पुराने ही अधिकतर बैठे हैं, तो कैसे किस प्रकार से अपने को रक्षा करो, अपनी रक्षा करो इस अग्नि से बचने के लिए, तो वो बाबा ने और दूसरी एक बात बताई आज ही की मुरली में। कौन सी बात, कि चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि चैरिटी, जो भी ये बात दान की बात होती है, वो सब पहले अपने से ही, अपने घर से ही शुरू की जाती। तो दूसरे को हम ज्ञान सुनाने चलें, परोपकार की बात, इसीलिए बाबा ने जो चार विषय दिए हैं ना, हमारे चार विषय तो सबको मालूम है ना, कौन से हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इसमें स्व उपकार से संबंधित कितने विषय हैं और परोपकार से संबंधित कितने विषय हैं। मुख्य रीति से देखा जाए मोटे तौर पर तो पहले जो तीन ज्ञान योग धारणा, ये सब पहले जो है अपने स्व उपकार से संबंधित। अगर हमने अपना ही उपकार नहीं किया होगा तो दूसरे का उपकार क्या करेंगे। यानी अपना कल्याण, अपने ही मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की होगी, हमारी ही मंशा वाचा कर्मणा सब अगर पवित्र शुद्ध नहीं होगी तो दूसरे को अगर हम मानव ज्ञान सुनाते भी हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो तो इस कारण से ये आवश्यक है, पहले ये अपना स्व उपकार, इसके द्वारा ज्ञान योग धारणा जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं, जो हम सब मुरली सुनते हैं, पहले वो अपने प्रति लागू करें स्व उपकार, फिर उस स्व उपकार के साथ साथ दूसरों का परोपकार भी साथ साथ होता जाएगा। वास्तव में परोपकार भी अपना ही है, पर उपकार। तो आत्मा का ये शरीर जो है ना, ये भी पर है, आत्मा का तो है नहीं, ये तो धारण किया है आत्मा ने इस पुरुष और प्रकृति के खेल में पार्ट बजाने के लिए। अनेकानेक 84 शरीर धारण किए हैं पूरे खेल में, उसमें एक शरीर 84वां ये भी है, तो ये भी हमारा शरीर नहीं, इसके द्वारा हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो इसका पर उपकार, सबसे पहले तो इस शरीर के द्वारा हमें इस शरीर का पहले उपकार करना है। उसका भाव क्या है शरीर का, क्योंकि ये जो शरीर की कर्मेंद्रियां हैं, आंख नाक कान हाथ वगैरह, तो ये कर्मेंद्रियों को, इनको हमें इतना पवित्र बनाना है, शांत बनाना है, शीतल बनाना है, कि इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हम जो भी कर्म करें, क्योंकि जितने कर्म होते हैं इन्हीं कर्मेंद्रियों के द्वारा होते हैं, आंख के द्वारा देखना, कान का सुनना, मुंह से बोलना आदि आदि, तो ये जितनी हमारी कर्मेंद्रियां भी पर, ये भी हमारे शरीर के जैसे खिड़कियां, तो इनके द्वारा जो भी कर्म होंगे वो भी उतने ही फिर शुद्ध शीतल पवित्र होंगे। तो इसलिए पहला परोपकार तो ये अपने आप हो जाता है जब हम आत्मा को, जितना अपना स्व उपकार आत्मा का उपकार करते हैं ज्ञान योग धारणा से, तो सबसे पहले पहले उसका रिफ्लेक्शन शरीर पर पड़ता है, हमारे देखने पर पड़ता है, हमारी वृत्ति के ऊपर जो पड़ता है, हमारा देखने का पूरा ध्येय ही बदल जाता है। पहले जिसको देह की दृष्टि से, देह के संबंध से देखते थे, वो पूरा बदल जाता है, आत्मिक संबंध की स्थापना हो जाती है। ऐसे ही जो भी बोलते हैं, पहले कोई साकार व्यक्त भाव के अधीन होकर बोला करते थे, अब फिर धीरे से यही होता है कि मैं भी आत्मा इस सृष्टि नाटकशाला में पार्ट बजा रही हूँ, ये आत्माएं भी सब पार्ट बजा रही हैं, किसी को कोई पार्ट मिला है, किसी को कोई, तो उस भाव से पार्ट को देखते हुए फिर हमारा देखना बोलना सुनना कर्म करना सब उसके द्वारा परिवर्तित हो जाता है। इसलिए स्व उपकार कैसे हम करें, क्योंकि विषय ये स्व उपकार के साथ साथ परोपकार, ऐसा नहीं कि पहले हम स्व उपकार करें फिर परोपकार, नहीं, शुरू में तो स्व उपकार, अपना जीवन जब परिवर्तित होता है उसके बाद बस प्रतिदिन यही चलता है कि स्व उपकार के साथ साथ परोपकार यानी विश्व सेवा भी साथ साथ होती रहती है। इसीलिए इसके लिए क्या देखना है, बाबा ने अनेक अनेक बातें बताई हैं, लेकिन उसकी विधि क्या है मुख्य है, उस विधि को 8 भागों में बांटा गया है। 8 रीति से हम अपने ऊपर अगर ध्यान देंगे, चिंतन करेंगे, तो स्व उपकार के साथ साथ परोपकार होता चला जाएगा। कैसे होगा सोपकार के साथ परोपकार, तो उसमें अपने ऊपर ध्यान देने की एक बात पहली जो बाबा ने ये कई अनेक विधियां बताई हैं उनको आठ भागों में बांटा है। तो पहला है कि रोज अमृत वेले जब उठते हैं ना, अमृत वेले योग करते हैं, तो उसके लिए भी बाबा ने बताया हुआ है अमृत वेले का जब योग होता है वो है हमारा एक तरीके से स्व उपकार के लिए। अपने अंदर हम जो गुण और शक्तियां जो बाबा ने बताया है उसको भरे, वो अपने को ध्यान में रखते हुए करें, अपने को हम इस देह से न्यारा होकर के सूक्ष्म वतन कभी परम धाम, बाबा ने पांच स्थान अलग अलग जो बताए हैं उन स्थानों पर ले जाके अलग अलग रीति से हम अपने प्रति स्वचिंतन, बहुत ऊंच स्वचिंतन करें, जो अनेक अनेक चिंतन बाबा ने दिए हुए हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं रोज अपने को ये याद दिलाऊं कि मैं विजयी रतन हूँ, मैं माला का मणका हूँ। ये ना सोचे अरे भाई इतने हमारी दादियां पुरानी हैं, पुराने भाई हैं, 80 साल से 50 साल से ज्ञान में चल रहे, मैं तो अभी 5-10 साल से ही चल रहा हूँ। नहीं, बाबा ने कहा है ड्रामा में पार्ट सबका है अलग अलग, लेकिन ये भी है पार्ट ड्रामा में लास्ट सो फास्ट जाने वालों का। और माला की बाबा ने एक विशेषता बताई है, आप सबको मालूम है बाबा ने माला की क्या विशेषता बताई है, कि इस माला में मेरे सब प्रकार के बच्चे हैं, सब प्रकार के, ये नहीं कि सब 1936-37 वाले ही हैं, नहीं, बाबा ने कहा कि आदि बहुत आदि रतन भी हैं, तो बाद में आने वाले बच्चे भी कोई माला के मड़के हैं। बाबा ने बताया इसमें समर्पित भी हैं तो गृहस्थी वाले भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं, इसमें कुमारियां हैं तो अधर कुमारियां भी हैं, माला कुमार हैं अधर कुमार भी हैं, भारतवासी हैं तो विदेशी भी हैं, यही माला की विशेषता है। तभी तो भगवान को न्यायकारी बोलेंगे, वो न्याय करता है, सभी को उसने चांस दिया हुआ है कि वो माला का मणका बन सके। और ये इसी आधार पर होता है कि कौन कितना स्वचिंतन करके स्व अपने ऊपर उपकार करता है, कल्याण अपना साथ साथ विश्व के कल्याण में बाबा का कितना सहयोगी बनता है। तो इसीलिए पहली बात यह है जो अमृत वेले का बाबा ने बताया है महत्व, और एक अमृत वेले का योग वो अपने लिए है स्व उपकार के लिए, और शाम का योग बाबा ने बताया नुमा शाम का, जो शाम को योग किया जाता है संध्या के समय, वो परोपकार का है। उसमें जो हमने शक्तियां गुण इकट्ठे किए हैं वो उसको हमें बांटना है। विश्व में ऐसी इतनी आत्माएं हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, तो उन सब को बस सम्मुख रखते हुए, कई बार बाबा कहते हैं बच्चों तुम बच्चों को क्या कानों में आवाज नहीं सुनाई पड़ती, इतनी दुखी अशांत आत्माएं हैं, चीत्कार कर रही हैं, हे भगवान हमें शांति दो, शक्ति दो, उनकी आवाज क्या आपके कानों में नहीं पड़ती? अगर कानों में पड़ती है तो स्वाभाविक रीति से हमारा चिंतन उनके लिए, हमारी शक्तियां उनके परोपकार के लिए होंगी। तो इसीलिए रोज ये एक नियम बना लें कि अमृत वेले अपने लिए शक्तियां इकट्ठी, अपने पास अगर स्टॉक होगा तभी तो हम बांट सकेंगे, जैसे बात हुई। तो इसीलिए अमृत वेले का योग किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, उसमें शक्ति इकट्ठी करके नुमा शाम को जब योग करें, सारे दिन भर में जब ऐसी कोई बातें हो उसको बांटते, परोपकार की रीति से बांटते चले। तो इसीलिए पहला यही है कि इसके लिए क्या करें, इसके लिए ये जरूरी है कि अमृत वेले ही हम अपने तन और मन की दिनचर्या को फिक्स कर लें। जब हमारी दिनचर्या फिक्स होती है तो क्या होता है, वो ध्यान में रहती है, मुझे ये काम करना है। जैसे हम सभी का अनुभव है, कोई कार्य होता है विशेष तो बुद्धि में रखते हैं, कई बार डायरी में नोट कर लेते हैं, भाई ये काम करना है, आज ये काम करना है। तो जैसे तन की दिनचर्या को फिक्स कर लेते हैं, आज ये काम करना है, ऐसे ही मन की भी दिनचर्या हो। नहीं तो मन भटकता रहता है, मन बहुत ज्यादा विचार करता है, और जितने अधिक विचार करता है उतना संकल्प में कम शक्ति होती है। कम संकल्प होंगे ज्यादा शक्तियां होंगी उस संकल्प में। इस कारण से तन और मन की दिनचर्या को फिक्स करें, और इसके लिए तन की दिनचर्या के तो हम सब अनुभवी हैं, जैसा कार्य होता है उस अनुसार वो तन की दिनचर्या फिक्स की जाती है। इसी तरह मन के संकल्पों की दिनचर्या भी उसी प्रकार से फिक्स करें। और इसमें विशेष बात बाबा ने बताई है, कौन सी? मन की दिनचर्या में अगर नटशेल में कहा जाए तो तीन बिंदियों की स्मृति। तीन बिंदी तो सब जानते हैं, बाबा ने कहा है ना, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। तो ये स्मृतियां, एक तो सौ की स्मृति हो, सौ भगवान बाबा ने जो बताया है, जितने समान बताए हैं उन समान को समय प्रति समय हम स्मृति में लाते रहे। इसी प्रकार से बाबा की स्मृति, बाबा के साथ अपने को कनेक्ट करते रहे। इसलिए आज भी बाबा ने कहा, कई बार बाबा कहते हैं ज्ञान जो है वो बुद्धि में टपकना चाहिए। बस ऐसा नहीं, एक होता है टपकना, एक होता है पूरा धार बना के पानी गिरा दिया, ठीक है उतना ही पानी एक बार में एक जगह से दूसरी जगह चला गया जहां चाहते हैं। लेकिन टपकना वो क्या होता है, वो लगातार एक एक बूंद उसकी जैसे यूटिलाइज हो जाती है, और टपकने में उसमें शक्ति आती है। जैसे जब कभी किसी को कमजोरी होती है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं देख करके ड्रिप लगा देते हैं, बस ग्लूकोज या कोई भी शक्ति का, और उससे एक एक बूंद जाता रहता है अंदर, वो पूरा का पूरा। नहीं तो गोली भी होती है, उसमें भी उससे ज्यादा शक्ति हो सकती है, लेकिन गोली का असर अपने रीति से बहुत देर में होगा, उससे जल्दी असर इंजेक्शन का होगा। और ये ड्रिप जो टपकती रहेगी उससे पूरे शरीर के अंदर वही ब्लड जो सर्कुलेट होता है। तो ऐसे ही ज्ञान जो है वो टपकना चाहिए। ये नहीं सुबह तो हमने एक दो घंटा भी याद कर लिया, सारे दिन भूल जाते हैं, उससे क्या है सारे दिन वो शक्ति नहीं आती है। इसीलिए बाबा ने पहले ट्रैफिक कंट्रोल के कुछ घंटे हुआ करते थे, अब हर घंटे के बाद एक दो मिनट ट्रैफिक कंट्रोल, यानी कि जहां भी हमारी बुद्धि का हो वो मन की दिनचर्या को हम फिर से ढर्रे पर ले आए। तो इसलिए सौ उपकार के साथ, परोपकार तभी हो सकेगा जब ये मन की दिनचर्या उसको फिक्स करेंगे, तन और मन की दिनचर्या। दूसरी बात इसके लिए है, जब तन और मन की दिनचर्या फिक्स हो जाती है तो ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं है, मुरली को बाबा ने कहा है मुरली आपने सुनी, फिर कुछ समय निकाल के मुरली के पॉइंट के ऊपर विचार सागर मंथन करो। जैसे आज की मुरली थी, भाई फायर ब्रिगेड है, अपने को समझो। तो बस फायर ब्रिगेड तो सबने देखी है, तो क्या होती है स्पेशलिटी फायर ब्रिगेड में, जहां से भी कहीं से फोन आया भाई यहाँ आग लगी, तुरंत ही, ये नहीं कि तैयार होंगे पानी भरेंगे उसमें, नहीं, सब बिल्कुल रेडी रहती है और एक दो मिनट में ही उसे वहां से रवाना कर देते हैं जहां पर आग लगी होती है। ऐसे बाबा ने कहा तुम बच्चे भी सदा एवर रेडी आओ, कोई भी हो पहले अपने को देखो, मेरे अंदर तो कहीं कोई आग नहीं लगी, कोई काम का संकल्प, क्रोध का, अहंकार का, ईर्ष्या का, ऐसा संकल्प तो नहीं आया। अगर आया तो तुरंत ही उसे ज्ञान के द्वारा उस संकल्प को समाप्त कर दो, तुरंत ऐसी ये लाइन क्लियर हो जो फायर ब्रिगेड जो बाबा ने कहा है उसके आधार पर उसे संकल्प। ऐसी कहीं दूसरी जगह अगर कोई है और उस आत्मा को शीतलता प्रदान करने के लिए, उसके लिए भी हम सदा तैयार रहें। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए विचार सागर मंथन, दूसरा पॉइंट है ये विचार सागर मंथन। जो बाबा ने कहा, फायर ब्रिगेड का कहा, वो तैयार होते हैं, स्टॉक उनका पानी का होता है, हर रीति से पूरा तैयार होते हैं, कपड़े और शूज वगैरह पूरा, फिर वहां जाते हैं, बस सब जगह रास्ता क्लियर है कि नहीं है, घंटा बजाते या सायरन बजाते हुए, जिससे वहां जल्दी से जल्दी पहुंच सके जहां आग लगी हुई है। ऐसे हम भी अपना बुद्धि कहीं पर भी बहुत भटक रही है या कहीं पर भी किन्हीं कामों में व्यस्त है, उन सब को समेट करके तुरंत ही जहां पर जो संकल्प हमें परेशान कर रहा है, कमजोरी का संकल्प, तुरंत उसकी तरफ कंसंट्रेट करके उस संकल्प पर हम विजय प्राप्त कर सके। और विचार सागर मंथन यही होता है कि उस चीज की गहराई में जाएं और साथ साथ उसको ज्ञान के आधार पर कैसे हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उस बात को सोचें। और क्या होता है, कहीं पर भी ये जाते हैं तुरंत ही फुर्त होते हैं वो। तो हम ये खुद देखें, बाबा भी कई बार कहता है, शायद कल परसों मुरली में था, कि अरे बच्चों को तो आराम का भी समय कोई नहीं देना है, अगर दोपहर के समय भी कोई आ जाता है, अपने आराम के समय का भी त्याग करके उसको ज्ञान देना है। एक दो दिन पहले भी बाबा का मुरली में था। तो फुर्त होते हैं, ऐसी अटेंशन, अलर्ट, एक्टिव, ये पूरा का पूरा हमें बुद्धि से वो सदा रहना है। और क्या होता है, क्योंकि जब मंथन होता है ना, दूध का भी मंथन होके मक्खन निकलता है, तो जितना अगर 1 किलो दूध में जितना शक्ति है, उससे थोड़े से ही मक्खन निकलेगा, उसमें ही उससे ज्यादा शक्ति होगी। तो इस कारण से आवश्यकता ये है कि विचार सागर मंथन, उस ज्ञान को हम अपना बना लें। और ज्ञान जब हमारा अपना बन जाता है, उससे शक्ति मिलती है। जैसे बैंक में कोई कैशियर होता है ना, बैंक में पैसा गिनेगा सारे दिन में, लाखों करोड़ों रुपए गिन करके जमा करेगा, देगा, लेकिन उसकी तरफ उसकी बुद्धि नहीं जाती, अटेंशन रहती है, लेकिन वो अपना नहीं होता है उसका, उससे उसे खुशी नहीं होती। खुशी किससे होती है? जब उसे महीने के अंत में या पहले में सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वो उसका अपना पैसा है। तो इस कारण से वो अपना पैसा 10-20 हजार, 50 हजार जो हो, चाहे रोज करोड़ों गिनता है, उससे वो नहीं होगी, लेकिन अपना जो है उससे खुशी होती है, उससे उसे शक्ति मिलती है, जैसा चाहे उसको यूज कर सकता है। तो ऐसे विचार सागर मंथन के लिए थोड़ा टाइम जरूर निकालें। कैसे करेंगे विचार सागर मंथन? अधिकतर बोलते हैं, बाबा हमारा विचार सागर मंथन नहीं होता है। बाबा ने विधि बड़ी सहज बताई है विचार सागर मंथन शुरू करने के लिए, अनुभव करने। क्या करो? हमारे जो चित्र हैं, चित्र के सामने जाके बैठ जाओ। त्रिमूर्ति है, झाड़ है, लक्ष्मी नारायण, सीढ़ी आदि, मानो कोई भी चित्र, झाड़ का चित्र है, कल्प वृक्ष का चित्र है, उसके सामने जाकर के मान लो हम बैठे हैं, और ये समझें कि जैसे कोई हमारे पास है, हम उसे समझा रहे हैं। तो बस कल्प वृक्ष के जड़ से शुरू करें, ओहो देखो बीज में, अपने को विजुअलाइज करें, इमेजिन करें, बाबा मामा के साथ जो रतन बैठे हुए हैं, मैं भी उनमें से एक रतन हूं, अपनी फोटो विजुअलाइज करें, मैं इस पूरे सृष्टि का, कल्प वृक्ष का बीज रूप हूं, मैं इसकी जड़ में हूं, सारा संसार मेरे आधार पर चल रहा है। तो ऐसे अपने को जब उस स्थिति में महसूस करेंगे, तो बहुत खुशी की, आनंद की, शक्ति की अनुभूति होगी। तो मैं बाबा के साथ, बाबा मामा के साथ, मैं इस सृष्टि की जड़ में आधार मूरत हूं। और उसी को सोचते सोचते सामने मेन तने पर पहुंच जाओ, सतयुग में वर्णन करो लक्ष्मी नारायण का, जो बाबा ने कहा है सतयुग कैसा होता है, 8 जन्म, सतयुग में होते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला, तो अपने इसको ही ये समझाओ विचार सागर मंथन करने में शुरू में। और जब अपने को ही समझाएंगे जैसे हम दूसरे को बता रहे हैं तो 2-4 दिन में ही ये अनुभव होगा, वो अपने आप ही आता रहेगा, चित्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चित्र जैसे दिमाग में छप जाएगा और अपने आप ही वो अनुभूति होती रहेगी कि हम कल्प वृक्ष में ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सतयुग त्रेता फिर द्वापर कलयुग, कैसे बाबा ने कहा ना, जो आदि में सो अंत में ब्रह्मा को नीचे बैठा दिखाया है, वही ब्रह्मा बाबा अंत में कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ दिखाया है। तो वो ब्रह्मा बाबा यानी ब्रह्मवत्स हम ही बच्चे, तभी तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कहते हैं। इसीलिए मैं ही अपने को विजुअलाइज करो, मैं जड़ में बैठा हुआ हूँ, देखो अपने को मन की आंखों से, और मैं ही ऊपर वृक्ष के ऊपर इस समय खड़ी हुई आत्मा हूँ, मैं ही खड़ा हूँ और अब इस समय सृष्टि की समस्त आत्माओं को ये शांति शक्ति के वाइब्रेशन वो दे रहा हूँ। शुद्ध भावना, शुभ भावना, शुभकामना पूरे सृष्टि की आत्माओं के। तो ये विचार सागर मंथन की विधि है, इसको शुरू शुरू में चित्रों के सामने बैठ के करते रहेंगे तो क्या होगा, 100 उपकार, अपना भी उपकार, क्योंकि जितना समय हमारा ये चलेगा उतना समय मन जो है व्यर्थ की बातों को नहीं सोचेगा। बाबा ने कहा है बच्चों में ना, मेरे बच्चे हैं तो उनमें ज्यादातर बच्चे इसमें तो पास हैं कि विकारी संकल्प नहीं चलते हैं, विकारों के ऊपर तो विजय प्राप्त की है, लेकिन अधिकतर की अभी तक भी ये कंप्लेंट है क्या कि व्यर्थ संकल्प चलते हैं, विकारी संकल्प नहीं व्यर्थ संकल्प। तो इस कारण से व्यर्थ संकल्प से बचने का यही तरीका है कि विचार सागर मंथन करें, और जितना जितना मंथन में बुद्धि व्यस्त रहेगी उतना क्या होगा, कोई भी नया पॉइंट बुद्धि में आएगा, जनरेट होगा विचार सागर मंथन से, उसकी बहुत अथाह खुशी होगी। तो दूसरी चीज ये है 100 उपकार की, एक एक जो बाबा ने कहा, एक अमृत वेले से अपनी तन और मन की दिनचर्या फिक्स करो, दूसरा विचार सागर मंथन करो, और विचार सागर मंथन से अपने अंदर काफी जानने को मिलेगा कि मैं कहां से शुरू हुआ ज्ञान में और कहाँ तक आया हूँ, आत्मा में कहाँ तक आई हूँ और कहाँ तक मुझे जाना बाकी है। रोज अपने लक्ष्य को बुद्धि में निर्धारित करके रखें। होता भी है, हम सबका अनुभव है, कोई भी प्रोग्राम होता है, मेला होता है, प्रदर्शनी होती है सेंटर में, या आपको यहाँ आना था, लक्ष्य निर्धारित था फलानी तारीख को पहुँचना है, तो पहले से ही रिजर्वेशन करा ली, कपड़े का बैग तैयार कर लिया, आदि आदि सब तैयारी कर लेते हैं जिससे कि हम निर्धारित समय पर जा सके। तो ऐसे ही इसमें भी निर्धारित समय पर जाने के लिए ये आवश्यक है कि ये दूसरा विचार सागर मंथन ये होता रहे। तीसरा एक अनुभव आवश्यकता ये है प्रैक्टिकल करने की, कौन सी, ये शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं सारा दिन, मैं करावनहार हूँ, बाबा को भी करणहार कहते हैं, हम अभी तक करणहारी में, मुझे ये करना है वो करना है, मेरे सिर पर ये बोझा है, ये ड्यूटी तो मुझे ही करनी है आदि आदि, लेकिन मैं करावनहार हूँ, इस शरीर के द्वारा मैं करा रही हूँ। अलग अलग बिल्कुल अनुभव करें कि मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर के द्वारा जो कर्म कर रहे हैं, हाथ के द्वारा, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, जो भी कर्म हो रहा है वो मैं जैसे अलग हूं, मैं न्यारी हूं, मैं प्यारी आत्मा। तो उससे क्या होगा, करावन हार की स्मृति से ना इस डिटैचमेंट की फीलिंग आएगी, मैं भले दिख रहा है मैं कर रही हूं लेकिन मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा करा रही हूं, तो डिटैचमेंट की जितनी फीलिंग होगी अंत समय ये ही काम आएगी। जितना डिटैच्ड ऑब्जर्वर होके काम करेंगे वो अंत समय जब हमारे प्राण तन से निकलेंगे, गायन भी है अंत मते सोगति का, तो इसलिए अंत मते सोगति कब होगी, जितना जितना जो भी कार्य होगा हमारा वो डिटैच्ड रीति से हम करते रहे। मैंने देखा बाबा को है ना, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ रहे काफी समय तक, और देखते थे बाबा किस प्रकार से, पहले बाबा बच्चों को बहुत समय देते थे, एक एक की एक एक बात सुनते थे, और उसके बाद धीरे धीरे बाबा जैसे कम समय, पहले अगर एक बच्चे को बैठ के 10 मिनट 15 मिनट अगर देते थे, बाद में कम हो गया 2 मिनट 1 मिनट, और अंतिम दो दिनों में तो हमने क्या देखा, 17 और 18 जनवरी 1969 को तब हम मधुबन में ही पहुंच गए थे, और दो दिन बाबा के साथ ही साथ थे 1969 में। तो बाबा ने, मैंने जब बाबा की ये कर्मातीत अवस्था देखी, हम सबको भी कर्मातीत अवस्था को तो पाना ही है, तो उस समय देखा कि जब भी हम बाबा के सम्मुख जाते थे, उससे पहले जब भी हम बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा से ये पूछेंगे पूछते थे, बाबा जवाब देते थे, बताना पड़ता था कि बाबा ऐसी स्थिति में क्या करें, ये प्रश्न है। लेकिन अंतिम दो दिनों में हमने देखा बाबा के सम्मुख जाके खड़ा होते थे तो बाबा थोड़ा दृष्टि दी ऐसे, और फिर बाबा कहते थे, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, यानी कि मन का प्रश्न भी बता देते थे और उसका समाधान भी दे देते थे। ये है स्थिति कौन सी, मन जीते जगत जीत की। कहते हैं ना मन के लिए, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, मन चंगा तो कठौत में गंगा। मन के लिए ही बहुत सारी बातें कही है, इसीलिए कहा गया है भारतीय संस्कृति में, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो इस कारण से मन के लिए ही सारी बात, लेकिन ये कह तो देते हैं हम, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कितना डिफिकल्ट है मन के संकल्पों पर कंट्रोल करना, उसको दिशा देना। अब बाबा का अंत में दो दिन में ये देखा, बस हरेक के मन के हाल को जान करके बाबा समाधान दे देते थे, और पूरा का पूरा सारा समय जैसे बाबा अपने उत्थान की तरफ, कर्मातीत अवस्था तो पहुंची हुई थी बाबा की, उस तरफ ही बाबा की सारी बुद्धि सारी शक्ति होती थी। तो हम लोगों को भी इस अवस्था को तो प्राप्त करना है, तो बाबा ने इस अवस्था को कैसे प्राप्त किया, यज्ञ के शुरू में ही बाबा ने, जब 1936-37 में बाबा को ज्ञान मिला, बल्कि उससे थोड़ा पहले ही बाबा ये अनुभव करते थे कि मन बहुत भाग जाता है इधर उधर, और जब बाबा को ज्ञान मिला कि मैं आत्मा राजा हूं और मन बुद्धि संस्कार ये तो मेरे कर्मचारी हैं, इनके द्वारा तो मुझे कार्य लेना है, तो बाबा को जब ये भान हुआ, बाबा ने मन को पत्र लिखा, उसकी एक एक कॉपी हम लोगों को दी गई थी, क्योंकि हिंदी में अनुवाद करके, जिसका सार ये था कि बाबा ने लिखा मन को, हे मन मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू इतना शक्तिशाली हो गया कि मुझ आत्मा राजा के ऊपर भी तूने जैसे विजय प्राप्त कर ली, जिधर तू जाता रहा भटकता रहा तू मुझे भटकाता रहा, मैं भी तेरे पीछे पीछे भागता रहा, हालांकि मैं राजा हूं तू मंत्री है, तुझे मेरे वश में होना चाहिए, लेकिन तूने मुझे अपने वश में कर लिया था। बाबा ने ऐसा लिखा पत्र में, फिर नेक्स्ट पहरे में लिखा बाबा ने कि लेकिन हे मन अब मैं तुझे बता देता हूं कि मैं आत्मा राजा अपनी स्थिति स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं, अब मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे नहीं भटकूंगा, बल्कि तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, क्योंकि मैं राजा हूं और तू मंत्री है, तुझे मेरे पीछे चलना होगा, मैं तेरे पीछे नहीं भटकूंगा। बाबा ने मन को ऑर्डर दिया, स्वस्थिति में स्थित होकर के ऑर्डर दिया, तो बस फिर बाबा को कभी कंप्लेंट नहीं हुई, फिर मन जो है हमेशा बाबा के कहने पर चला। ऐसी हमें भी करना है ये बात कि मन को ना पहले अपने सुमान की सीट पर हम स्थित होकर के तब मन को ऑर्डर करें, ये बात बहुत जरूरी है। नहीं तो होता क्या है ज्यादातर करके कि हम बिना सुमान की सीट पर स्थित होके ऑर्डर करते हैं तो मन हमारी बात नहीं मानता। लौकिक दुनिया में भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है या पॉलिटिकल लीडर होता है, जब तक अपनी सीट पर होता है वो सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन जब उसका ट्रांसफर हो जाए या रिटायर हो जाए या मतलब नहीं है पोस्ट पर, तो कोई उसकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। इसीलिए हम पहले अपने को सुमान की सीट पर थोड़ा समय स्थित करें। जब मन भटक रहा है, बेचैन है, इधर उधर जा रहा है, कोई परिस्थिति ऐसी आई है, मन एकदम उधर ही की तरफ बार बार जा रहा है, तो थोड़ा समय पहले मन को सुमान की सीट पर स्थित करें। जो बाबा ने अनेक अनेक सुमान दिए हैं, बाबा अपने को महानतम, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयमाला का मणका हूँ, मैं बाबा की मस्तक मणि हूँ, बाबा हम तेरे हृदय में विराजमान हैं, तू हमारा हम दिल तख्त नशीन आत्मा है, तो ऐसे ऐसे पॉजिटिव सुमान के साथ थोड़ा हम अपने को ये सुमान दें, उसमें स्थित हों। उसके बाद जब हमें जिस शक्ति की आवश्यकता है, मानो मन भटक रहा है, समेटने की शक्ति की आवश्यकता है, उस समेटने की शक्ति का आवाहन करें। पहले जमाने में सुना करते थे ना, कोई राजा है, बस वहां पर कोई दरबार लगा है, किसी को दास दासी को बुलाने की आवश्यकता होती थी तो ऐसे ताली बजाई, वो दास दासी कोई आए, उनको ऑर्डर करा कि फलाने को बुलाओ, वो आते थे और इस तरह कारोबार चलता था। तो इस तरह हमें भी अपने को ये ऐसे स्थित सुमान की सीट पर स्थित होके जैसे ही मन को ऑर्डर करेंगे, बुद्धि को ऑर्डर करेंगे, बस वो बंधे हुए हैं हमारा आज्ञा मानने के लिए, क्योंकि वो हम जो है राजा हैं, आत्मा राजा, ये सब हमारे कर्मचारी, इनके द्वारा हम कर्म कर रहे हैं। तो एक ये है कि मैं करावनहार हूं, मैं कर रहे हूं, इसके लिए मैं आत्मा अलग हूं। बस अक्सर करके क्या है, हम शुरू से यही देखते रहे कि बस बचपन से ये आदत पड़ गई है कि हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। कोई भी बात हुई तो उसने ऐसा कहा तो मुझे क्रोध आ गया, उसने ये किया तो इसलिए मैंने भी ये किया। दूसरे को हम कहते हैं और दूसरे पर दोष करते हैं, लेकिन अपने को नहीं देखते। बड़ा अच्छा किसी ने कहा है, मिरर होता है ना शीशा, हाँ, कि जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे। कौन सी भूल की? जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। आईना होता है ना, तो आईने में देखी शक्ल और कुछ धब्बे दिख रहे हैं, हम समझते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, ये आईने की धूल है, लेकिन आईने को जितना साफ करोगे, अगर हमारे ही धब्बे होंगे, दाग होंगे, तो वो तो मिरर तो वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम अपने को नहीं देखते, दूसरों को देखते। तो इसलिए एक सिद्धांत जीवन में ये भी बना लें कि जियो और जीने दो, बस। नहीं तो कभी सास बहू का, परिवार के अंदर बाप बेटे का, भाई भाई का कुछ क्लैश होता है ना, उसका कारण यह है हम दूसरे को अपनी इच्छा के अनुरूप चलाना चाहते हैं। तो वो न करके भाई संसार है, हरेक का अपने अपने संस्कार है, हाँ गाइड करना हमारा फर्ज है, एक दो बार गाइड करें, बताएं, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं होता तो हम उसके पीछे ही पढ़ करके अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद करें, ऐसा आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए एक ये अपने को ये तीसरा ये समझो अभ्यास हो कि मैं करावना। चौथा ये अभ्यास कि जो मैं करा रहे हूं, बाबा ने कहा है ये सब कर्मेंद्रियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा और कौन सी कर्मेंद्री है जो मनुष्य को भटकाती है, कौन सी कर्मेंद्रिय? आंख। तो इस कारण से इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसीलिए बाबा ने कहा अंत में जो एक चीज काम आएगी वो आएगी साक्षी दृष्टा। बहुत संसार में खेल हो रहे होंगे, लोग मर रहे होंगे, उथल पुथल हो रही होगी, लेकिन हम साक्षी होकर के उस दृश्य को देखते चले। तो साक्षी दृष्टा होके हम कैसे रह सकेंगे, इसके लिए चार पांच बातें बुद्धि में हमेशा रखें। कौन सी? एक तो ये जो है ना, ये आंख क्या है? ये है दृष्टि, ये खिड़की है। आंख नहीं देखती, आत्मा आंख के द्वारा देखती है। तो इसीलिए ये दृष्टि है, मैं आत्मा दृष्टा। तो ये बुद्धि में रहे, मैं दृष्टा हूं इस दृष्टि। खिड़की के सामने खड़े हो जाओ, अब खिड़की कोई बाहर का दृश्य थोड़ी देख रही है, लेकिन हम देखने वाले खिड़की के थ्रू बाहर का दृश्य देख रहे हैं। तो ये दृष्टि है, आत्मा दृष्टा है। तीसरी बात, बाहर जो हम देख रहे हैं वो सब दृश्य है। संसार में जो कुछ भी होता है ये सब दृश्य चल रहे हैं। मैं दृष्टा आत्मा इस दृष्टि के द्वारा ये दृश्य देख रही हूं। तो जब दृश्य देखेंगे तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो दृश्य बाहर के हैं। मैं जितना साक्षी होकर दृश्य देखेंगे, अगर दुख का दृश्य होगा हम बहुत दुखी ना हो, बहुत खुशी का हुआ हम बिल्कुल खुश, एकदम खुशी में ना फूल जाएं, ऐसे साक्षी होकर के हमारी स्थिति रहे, वो तब होगा मैं ये दृश्य देख रही हूं, मैं दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा ये दृश्य देख रही हूं। और इसके साथ साथ और क्या करें? जब हम इस रीति से देखेंगे ना तो इतिहास में हमारा दृष्टांत लिखा जाएगा। भक्ति मार्ग में जो द्वापर युग से जितने शास्त्र बने हैं बड़े बड़े भक्तों के, वो हमारे आपके ही तो हैं और किसी के नहीं। हम ही लोग कोई कोई भक्त के रूप में बहुत भगवान की भक्ति किए जो बाबा ने कहा है और इस स्थिति तक पहुंच गए हैं। तो इसलिए दृष्टांत हमारे लिखे जाएंगे। और ये सबका मुख्य आधार क्या है? पांचवी बात, हमारा जीवन में दृष्टिकोण कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। तो जीवन में दृष्टिकोण अगर हमारा पॉजिटिव होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण सब चीजों के, व्यक्तियों के, वस्तुओं के प्रति होगा, परिस्थिति के प्रति, तो जैसा दृष्टिकोण होगा हमें वो चीज वैसी ही नजर आएगी। पॉजिटिव दृष्टिकोण होगा पॉजिटिव नजर आएगी, आंख पे हरा चश्मा होगा सब चीज हरी हरी नजर आएगी, लाल चश्मा होगा लाल लाल नजर आएगी। तो इसीलिए एक इस बात को हम देखें, तो ये हमारा दृष्टिकोण रहे। तो ये बाबा ने जो पांच बातें, दृष्टि, दृष्टा, दृश्य, दृष्टांत और दृष्टिकोण, ये बात हमारी आंखों को, नैनों को बिल्कुल पवित्र और हमें साक्षी दृष्टा बनने में बहुत बहुत मदद करेगी। और अंत में हम साक्षी दृष्टा होकर के संसार के सारे दृश्यों को उस रीति से देखेंगे। इसके लिए और क्या करना चाहिए? एक बात बाबा ने बहुत बताई कि बुद्धि को एकांत भी दो और संगठन भी दो। संगठन की अपनी शक्ति होती है, एकांत की अपनी शक्ति होती है। एकांत अगर होता है बुद्धि को तो बुद्धि को उससे बल मिलता है। एकांत में बुद्धि विचार सागर मंथन, एकांत में और संगठन में चरित्र का बल मिलता है। जब संगठन में होते हैं तो व्यक्ति का अटेंशन होता है मेरे द्वारा कोई ऐसा काम न हो कि संगठन में बुरा असर पड़े। माता पिता भी होते हैं, अकेले होते हैं, कुछ भी करें, लेकिन जब बच्चे होते हैं सामने तो उनका अटेंशन रहता है कि बच्चे के ऊपर कोई गलत असर ना पड़े हमारी एक्टिविटी का। तो इस कारण से बाबा ने कहा ये जरूर, क्योंकि यही हमारा ब्राह्मण परिवार है। कई बार हम किनारा कर लेते हैं, किसी से मिली नहीं, मन नहीं मिला, एकांत चलो भाई उससे हमें कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है, यही तो ब्राह्मण परिवार है। सतयुग के आदि से लेकर अंत तक भिन्न भिन्न नाम रूप में हम सबको साथ रहना है। तो न तो उनसे हम किनारा करें और इतना भी इन्वॉल्व ना हो जाएं कि बुद्धि को बिल्कुल भी एकांत ना दे सके। बुद्धि को एकांत का भी वाली सीनियर बाबा ने अमृत वेले का और शाम के समय का कितना महत्व तो दिया है, और बाकी संगठन का बल। तो जब ये बल होते हैं तो साथ साथ स्व उपकार अपना होता चलता है, स्वोपकार के साथ परोपकार भी होता है। स्वस्थिति परिस्थितियां तो आएंगी, हमने देखा ब्रह्मा बाबा के सामने भी परिस्थिति आती थी। अब बाबा इतने 93 इयर्स के थे हमने देखा, और कई बार बाबा को खांसी भी आती थी, तो बस कई बार खांसते खांसते ऐसी स्थिति हो जाती थी, आंख भी जैसे गीली हो जाती थी, हम लोगों को लगता था बाबा को जैसे बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन थोड़े समय में ही बाबा के हिस्ट्री हॉल देखा होगा ना आपने, पांडव भवन गए होंगे, देखा होगा बाबा की संदली है, तीन संदलियां वहां पर पड़ी हुई हैं। सबसे एक्सट्रीम राइट पर इधर बाबा बैठते थे, उधर वाले पर मामा, और बीच में जो संदली रहती थी वो खाली रहती थी। जब पार्टियां आती थी, बच्चे आते थे, उस पर बैठ के अपना अनुभव सुनाते थे, अपने पुरुषार्थ की रूपरेखा बताते थे, हमें ये करना है आदि आदि। तो बाबा को के पास एक ट्रांसलाइट का चित्र रखा रहता था, लक्ष्मी नारायण का और कृष्ण का भी। तो खांसी रूपी परिस्थिति आई, परेशान कर रही है, बाबा बस दूसरे ही क्षण बोलते थे, देखो बच्चे अभी ये तो पुराना तमो प्रधान शरीर है, पुराने तत्व हैं, और ये शरीर उनका बना हुआ है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा मिचनू कृष्ण बनेगा, नए तत्व होंगे, सतो प्रधान शरीर होगा, वो कितना खुश हो नसीब है, कितना खुशी की बात होगी, तब ये खांसी या कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और बस बाबा ने थोड़ा ये बात बताया, बुद्धि उधर की तरफ ले गए, बुद्धि शरीर की खांसी से निकली, तुरंत ही बस चेहरे पर वही खुशी, हंसी, वही आनंद, चमक वही आ जाती थी, और बस वो परिस्थिति के ऊपर बाबा अपनी स्वस्थिति से विजय प्राप्त कर लेता था, वो परिस्थिति बदल जाया करती थी। ऐसे ही बाबा ने कहा है, परिस्थितियां तो हम सबके सामने आएंगी, अलग अलग पेपर आएंगे, बहुत तन का, मन का, धन का, संबंध का, परिस्थितियों का बहुत पेपर आएंगे, लेकिन पेपर आए और हम उसके वशीभूत ना हो, पेपर आके जैसे चेतावनी दे, हम अपनी स्वस्थिति को इतनी शक्तिशाली बना लें कि तुरंत ही उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लें। इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है कि अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में आती हैं, उन्हें तीन भागों में जैसे बांटते हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। तन की समस्या, धन की समस्या, व्यक्तियों की समस्या आदि आदि, तो आदि, व्याधि और उपाधि, और इसका उपाय क्या है? समाधि। समाधि का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं हिमालय की गोदी में चले जाओ, कहीं एकांत में, नहीं, मन को समाधिस्थ कर लो, मन को बाहरी हलचल से, कोलाहल से, उससे मन को अपने शक्तियों के द्वारा अलग कर लो, एकांत कर लो। इसका अभ्यास होता है, आप सबको अभ्यास है, बाहर की गर्मी से आ रहे हैं, बहुत गर्मी है बाहर, 40-45 डिग्री टेम्परेचर, एसी रूम में आए जहां एयर कंडीशनर है, बस अंदर आते ही ठंडक, शीतलता का अनुभव होता है, कितना आत्मा को तृप्ति होती है। क्यों? क्योंकि बाहर का वातावरण और अंदर का वातावरण अलग अलग है, और इस कारण से बाहर के वातावरण से अंदर के वातावरण को अलग कर दिया है, तो अंदर का वातावरण सुखद महसूस होता है। ऐसे ही जब कभी बाहर की परिस्थिति आए तो मन को जो है ना, हमें जो बाबा ने शक्तियां दी है, एकांत योग की शक्ति दी है, तो उसके द्वारा हम अपने को डिटैच्ड जितना अनुभव करेंगे, वो डिटैचमेंट हमें उतना ही सुखद अनुभूतियां कराएगी। तो स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर ऐसे विजय होती है, बाबा का देखते थे। और लास्ट डे भी देखा, कोई भी बात होती थी, देखो उससे हमें पहले ही ये बात की अनुभूति हो जाएगी, ये होने वाला है, उसका अपने को आभास होगा, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, कई बार ये बोल तो देते हैं, लेकिन उसका अनुभव हो कि ये होने वाला है और साथ साथ ये अनुभव हो कि इस परिस्थिति को मुझे कैसे पार करना है, क्योंकि अंत मते सो गति की बात है। अंत में ऐसी स्थिति हमारी हो, हमें आभास हो जाए। बाबा का यही देखा, 18 जनवरी को सुबह बाबा क्लास में आए, लेकिन उस दिन बाबा ने पूरा योग ही कराया, कोई मुरली नहीं चलाई। 1969 की बात कर रहा हूं, 18 जनवरी बाबा का अंतिम दिन साकार में। तो उस रीति से फिर बाबा सबको योग करा के शक्तियों से भर करके बाबा चले गए। फिर बाबा ने यीशु दादी को बोला, पहले तो पत्र ही लिखे जाते थे, भाई आज जितने भी पत्रों के उत्तर अगर पेंडिंग पड़े हैं बचे हुए, वो सारे उत्तर लिखवा लो। तो बस उन्होंने सारे, बाबा ने कोई भी पत्र काम रहने नहीं दिया, पत्रों के उत्तर लिखे पूरा का पूरा। और मधु वहां पर आबू में, माउंट आबू में जो नक्की लेक के पास म्यूजियम है ना हमारा, वो म्यूजियम की बिल्डिंग को लेने की बात चल रही थी, तो उसी दिन बाबा ने वो फाइल क्लियर करी कि इस बिल्डिंग को लेकर के यहाँ पर सेवा के साधन यानी म्यूजियम आदि खोला जाए। तो वो खोला गया उसके बाद। तो उसी दिन बाबा ने कोई भी काम, सबसे बड़ी बात है कि रोज रात को क्लास 9 बजे होती है मधुबन में, लेकिन उस दिन बाबा ने 6:30 बजे ही एक भाई को बोला, जमुना प्रसाद भाई को, कि आज अनाउंस कर दो कि बाबा क्लास शाम की अभी लेगा 7:30 बजे। तो बस उन्होंने अनाउंस कर दिया और वो क्लास रात्रि क्लास शाम को 7:30 बजे ही शुरू, 1.5 घंटा पहले ही बाबा क्लास में आए। तो बस बिल्कुल बाबा का रूप जो था ऐसा ही, जैसे बाल कृष्ण जैसा भासना आ रही थी, पूरा श्वेत वस्त्र तो होते ही थे हमेशा ही, लेकिन उसी रीति से जैसे चलते हुए जमीन पर जैसे पैर नहीं है, फरिश्ते के रूप में बाबा क्लास में आए। क्लास में आके बाबा ने मुरली चलाई। तो अंतिम कर्मातीत अवस्था के ये भी एक लक्षण है कि जितने भी देह के ना जो भी हिसाब किताब हैं, सबके ऊपर योग बल हमारा जो है कर्म भोग के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। कोई भी कर्म भोग देह भोग का वो परेशान नहीं करता। तो वैसे उन दिनों कुछ बाबा को खांसी और तबीयत काफी खराब, मतलब ऐसा महसूस होता था, लेकिन उस दिन बाबा ने जो मुरली चलाई 18 जनवरी की रात्रि को, उस मुरली में एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, एक बार भी कोई व्यधान पैदा नहीं हुआ, और बिल्कुल इतनी फ्लॉलेस मुरली बाबा की चली। वो इस बात का सूचक है कर्मातीत अवस्था का, कर्म भोग के ऊपर योग बल ने संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली। और क्या हुआ उस दिन, हम तो सामने ही बैठे हुए बाबा की मुरली सुन रहे थे 18 जनवरी की, जैसा बताया उस दिन हम पहले ही 2 दिन पहले आ गए थे। तो एकाएक ही हमारे मन के अंदर संकल्प आया कि बाबा कुछ बोले हमारे लिए। तो जैसे भक्ति में भी गायन है ना, भक्त के मन में इच्छा हुई ये वरदान मिले या कोई वरदान, तो अगर उसकी नवदा भक्ति होती थी बहुत पवित्र, तो बस भगवान दर्शन देते थे और कहते थे मांग लो वरदान। भक्त मांगता था, भगवान के मुंह से क्या निकलता था, बस ऐसे ही तथास्तु, और भगवान अंतर ध्यान हो जाते थे। ऐसा भक्ति मार्ग में शास्त्रों में गायन है। तो हम सामने बैठे थे, मन में संकल्प आया बाबा कुछ बोले, संकल्प हमारा थोड़े समय, जैसे ही कुछ सेकंड में ही तुरंत ही बाबा ने नाम लेके बस मुरली में उच्चारण कर दिया, और जो मन में संकल्प था बाबा ने तुरंत ही नाम लेकर के, तभी तो पता चले, तो नाम लेके तुरंत ही बाबा ने बहुत वर्णन कर दिया। तो देखो ये होता है, क्योंकि द्वापर युग से तो हम सब लोग, ब्रह्मा बाबा तो कृष्ण की आत्मा, तो कृष्ण वो तो भगवान भक्ति मार्ग में जो समझते हैं, तो उसमें जो भी हम लोग अब बाबा के बच्चे बने हैं, तो जो यहाँ से संस्कार होते हैं सब प्रकार के, वही संस्कार सारे कल्प में जैसे अपने अपने समय पर फिर वो प्रकट होते हैं। तो इस रीति से बाबा का उस दिन जो भी मन में, इसीलिए कहा है मन के संकल्पों को कि मन जीते जगत जीत। बाबा ये कौन कर सकता है? जिसने अपने संकल्पों को जीता होगा वो ही दूसरे के संकल्पों को पढ़ सकता है। जिसने अपने मन के संकल्पों को ही पूरी तरह नहीं जीता होगा तो वो दूसरे के संकल्पों को पढ़ करके उसका समाधान नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि वो जो भी दूसरे के संकल्प होंगे उसके पास आएंगे वो संकल्प क्या होगा, मिक्स हो जाएंगे। तो अपने संकल्प के ऊपर विजय प्राप्त करना जरूरी है, इसीलिए मन जीते जगत जीत। फिर बाबा ने मुरली चलाई, उस मुरली को चला करके बाबा खड़े हुए, सब बच्चों को दृष्टि देने लगे। आगे प्रकाशमणि दादी जी भी बैठे हुए थे, बाबा ने उन्हें बहुत देर तक दृष्टि दी, बार बार बाबा उन्हें दृष्टि देते थे। फिर धीरे धीरे चलते हुए बाबा दरवाजे तक जाके, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। ये बाबा ने पहले कभी नहीं बोला, उसी दिन ही बोला छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। तो बस ये कह के बाबा अपने कमरे में की तरफ चल दिए। तो भाव क्या है, जब ये आभास होने लगता है कि हाँ अब मेरा जैसे ये अंतिम समय आ गया है बाबा, अब मैं संपूर्ण रीति से बस आपके पास अब आ रही हूँ आत्मा। जाना तो हम सबको ये शरीर छोड़ के, लेकिन हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, कोई प्रकृति के वश होके शरीर ना छोड़े। अर्थक्वेक हुआ, बिल्डिंग गिरी, कोई उससे शरीर छोड़ दिया, कोई दुख व्याधि से नहीं, अपनी इच्छा से, हाँ बाबा मेरा हिसाब किताब यहाँ से पूरा हुआ, अब मैं आत्मा आपके पास। बाबा का उस दिन जितने भी दिनचर्या थी सबसे ये अभ्यास मिला। अगर बाबा क्लास प्रीपोन न करते, अगर जल्दी न करते, तो उसके बाद तो बाबा शरीर छोड़ चुके थे, उस दिन बच्चों से मिल ही नहीं सकते थे। तो ये ऐसा ही, ये सुनने के लिए नहीं है बाबा की, लेकिन हमें भी ऐसा ही बनना है, तब हम स्व उपकार, अपने ऊपर उपकार के साथ साथ तो सब पर उपकार कर सकेंगे। यानी कि दूसरे जो भी आत्मा है ना हमारे के द्वारा, क्योंकि जितना हम स्व उपकार करते हैं उतने हमारे वाइब्रेशन, उतना हमारा ऑरा जो होता है लाइट का, वो ऑरा उतना ही शक्तिशाली होता चला जाता है, हमारे वाइब्रेशन उतने शक्तिशाली होते चले जाते हैं और हम जीवन में सफलता प्राप्त करते चले जाते हैं। तो आज ये आवश्यकता इस बात की है कि हम किस प्रकार से अपने को वो करें, और ये करते चलेंगे बाबा को फॉलो, तो क्या होगा अंतिम में, अंत में स्व उपकार के साथ परोपकार। तो ये शरीर जो है ना, ये पांच तत्वों का जो बना शरीर है, यानी ये प्रकृति के पांच तत्व, हमने अपनी आत्मा को तो मानो पावन बना लिया, लेकिन प्रकृति के पांच तत्वों को अगर पावन नहीं बनाया तो हम संपूर्ण रीति से विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि जगत के अंदर मन जीते जगत, जगत के अंदर तो ये प्रकृति भी आ गई, पांच तत्व भी आ गए, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश। तो अंत में हमने ये देखा, बाबा ने ये शरीर छोड़ा, मुरली सुना के बाबा गए कमरे में और बस दादी जी के हाथ में हाथ और देह त्याग किया। वो शरीर 18 जनवरी को जो उन्होंने छोड़ा, बाबा ने रात को रात भर रखा रहा, 19 का सारा दिन 19 की रात, 20 का सारा दिन 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद उसका संस्कार किया गया। लेकिन इतना करीब 65 घंटे के बाद भी बाबा का शरीर वो पूरा चमकता रहा, कोई भी काला नहीं पड़ा, कोई भी उसमें से दुर्गंध नहीं आई, हम तो वहीं थे, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था। ये तत्वों के ऊपर सबसे बड़ी बात, ये काफी हद तक थोड़ा बहुत तो था स्टिफनेस, लेकिन काफी हद तक बाबा के शरीर में वो, नहीं तो आत्मा जब चली जाती है तो शरीर बिल्कुल अकड़ जाता है कुछ घंटों में ही, लेकिन इतने घंटों में भी बाबा का शरीर जैसे काफी हद तक बिल्कुल चमकता हुआ और दुर्गंध रहित, ऐसा लगता था हमेशा की तरह बाबा उठेंगे। अब बाबा जैसे कहते थे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, हाथ फैला के सबको करते थे आवाहन और बच्चे भी तुरंत बाबा की बाहों में समा जाते थे। लगता था बस ऐसे ही बाबा अभी फिर करने वाले हैं। तो ये प्रकृति के पांच तत्वों का बना शरीर भी अंत तक हमारा साथ दे तो ये तभी होगा जब हम प्रकृति के पांच तत्वों को भी उनको पवित्रता का, शांति का, शक्ति का, इसका दान करते रहेंगे। तो प्रतिदिन ये नियम बना लें, जैसे हम योग करते हैं, अपने लिए करते हैं, सृष्टि की आत्माओं के लिए भी, ऐसी प्रकृति के लिए भी हम रोज कुछ समय अवश्य निकालें। ये जल तत्व देखो, याद करो, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, हर तत्व के उसके साथ अपनी मित्रता कर लो, जिससे अंत समय में भारतवासियों का तो बाबा ने खास बताया है ना कि भारतवासियों की जो शरीर छोड़ेंगे वो किस कारण छोड़ेंगे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। प्राकृतिक आपदा माने अर्थक्वेक होगा, कहीं सुनामी होगी, फ्लड होगा, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं अग्नि, बहुत गर्मी पड़ेगी, अति गर्मी, अति सर्दी, अति बरसात, तो ये प्रकृति की आपदाओं के कारण। तो प्रकृति के तत्वों को हम थोड़ा सा अपना मित्र बना लें, ये प्रकृति के तत्व। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन मैं एक बात टच करके ही छोड़ दूंगा। तो कैसे प्रकृति के तत्वों को मित्र बना सकते हैं, क्योंकि मित्र हमेशा मित्र की रक्षा करता है, मित्र मित्र के प्राण नहीं लेता। तो ये अर्थक्वेक, भूचाल आएंगे, बहुत बिल्डिंग गिरेंगी, बहुत लोग मरेंगे, सबने कच्छ भुज का उस समय 2000 का देखा ही है कि क्या हुआ था। और इमेजिन करो कि जब चारों तरफ ऐसा होगा कितनी भयानक परिस्थिति होगी, लेकिन उस परिस्थिति में भी किस प्रकार से हम विजय प्राप्त कर लें। तो प्रकृति का, धरती का मुख्य गुण कौन सा है, पृथ्वी का मुख्य गुण कौन सा है, सहनशीलता, वो भी ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है पृथ्वी दाता है, देती है। हर देखो पृथ्वी से पानी भी मिलता है, सब्जी, अनाज, फल, फ्रूट सब पृथ्वी से ही तो पैदा होते हैं। तो इसीलिए पृथ्वी अगर दाता है तो हम भी सदा दाता बनके, हमारे द्वार खुले रहे सबके लिए, हम दाता बने। शुभ भावना, शुभकामना, सहयोग, ये इन चीजों में कुछ खर्च तो होता नहीं है। तो इसीलिए हर आत्मा के प्रति हमारी भावना महान हो, उसका कल्याण हो, है नहीं? अच्छा, तो कोई भी ऐसी भावना ना रहे किसी के प्रति भी निगेटिव फीलिंग। ऐसी जल का सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है, जल फ्लेक्सिबल होता है। पानी को गिलास में ले लो, गिलास जैसा आकार ले लेगा, कटोरी लो, कटोरी जैसा आकार ले लेगा। ऐसे ही हमारा संस्कार भी हरेक के साथ हम मिल करके चल सके, ऐसा संस्कार हो, किसी के साथ क्लैश ना हो, तो क्या होगा, पानी के द्वारा जो आपदाएं आएंगी, पृथ्वी के द्वारा जो आपदाएं आएंगी, वो कोई भी इस बात का, हमारे विनाश का कारण नहीं बनेगी। ऐसे ही सभी तत्वों को अगर हम देखें, इस पर मंथन करें, तो एक एक गुण सबका लेते चलेंगे तो तत्वों के द्वारा भी उनको हम अपना मित्र बना लेंगे, तो क्या होगा, ये जो है हमारा अपने ऊपर उपकार होगा, क्योंकि शरीर तो हमारा ही है ना अपने, लेकिन हमारे साथ साथ विश्व के ऊपर भी उपकार। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा ने कैसे प्रकृति पर विजय प्राप्त की, ये उपकार रहे, आप सबके प्रति यही शुभ भावना है कि इन तत्वों के प्रति उपकार कर अपने को स्वोपकारी भी बने और परोपकारी भी बनकर हम चलते चले। ओम शांति, ओम शांति।